SBS हिंदी।
दोस्तों SBS हिंदी पर आज हम बात करते हैं जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें जो मनोवैज्ञानिक समस्या है, जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समस्या है, बीमारियां हैं, वो बताई गई हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह से आजकल की मॉडर्न ट्रीटमेंट थेरेपीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक अभ्यास किया गया जिसमें बहुत ही गहरा संबंध पाया गया है माइथोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में। तो चलिए जानते हैं कि जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में समस्याएँ और इलाज बताए गए हैं वो किस तरह से आज की उपचार में भी उतने यथार्थ हैं। इस विषय पर बात कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर मनन टकरार। डॉक्टर मनन, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
SBS हिंदी के सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार।
डॉक्टर मनन, सबसे पहले ये बताइए कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में तो आपने कहा कि बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं, मानसिक बीमारियों का जिक्र है और साथ साथ में उसके इलाज के बारे में भी बात की गई है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी मानसिक बीमारियां हैं जो इतने वर्ष, हजारों वर्ष पूर्व भी मौजूद थी और आज भी आप जब कहते हैं कि आपके पास कोई पेशेंट आता है, कोई मरीज आता है, तो वो उसी बीमारियों को लेकर आता है।
महाभारत का जो भगवद गीता का जो पहला श्लोक है उसमें जब अर्जुन अपने मानसिक अवस्था की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा गला सूख रहा है, मेरे हार्ट बीट्स बढ़ गए हैं, मुझे पसीना आ रहा है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। वो जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो काफी सिमिलर है एक पैनिक अटैक से, जो पैनिक डिसऑर्डर में बहुत कॉमनली होता है। काफी सारे हमारे लिसनर्स को भी होगा क्योंकि वो एक बहुत ही कॉमनली मिलता एक डिसऑर्डर है। साथ साथ में जब आप भगवद गीता के एंड तक जाए या महाभारत की युद्ध के एंड तक जाए तो लास्ट जो तीन चार दिन जो डिस्क्राइब किए गए हैं भीष्म पितामह के, कि वो अकेले रहते हैं, दुखी रहते हैं, किसी के साथ नहीं रहते हैं, एक तरह से उनको अब जीने की बहुत इच्छा नहीं होती है। वो भी अगर आप शांति से साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आप एनालाइज करें तभी उनका बॉडी लैंग्वेज भी वही चीज। आप जो पुरानी महाभारत की जो सीरियल थी वो अगर देखें और उसमें भीष्म पितामह की जो बॉडी लैंग्वेज उसके पहले दिखाई गई है और उसके बाद में दिखाई गई है तो वो वाकई धन्यवाद के पात्र है कि जो उनका जो एक्टिंग और जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज दिखाया गया है वो काफी काफी साइंटिफिक और काफी रियल दिखाया गया है कि जब भी कोई इंसान बहुत सीवियर डिप्रेशन में होता है तो उसका कैसा बॉडी लैंग्वेज होता है, उसकी कैसी रीति नीति होती है, वो सब चीजें बहुत ब्यूटीफुल तरह से दिखाई गई है। और साथ साथ में जब हम ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं तो एक पेपर था डॉक्टर NN विक करके, एक काफी सीनियर साइकियाट्रिस्ट हो चुके जिनकी अभी 6-8 महीने पहले ही डेथ हुई। उन्होंने एक पेपर लिखा था कि भगवद गीता वॉज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड काउंसलिंग सेशन, और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जब वो पूरा वो 18 श्लोक का जो सेशन था उसमें हाउ ही टुक अर्जुन फ्रॉम ऑन अ जर्नी, ऑन अ फिलोसॉफिकल जर्नी, और जैसे उनको पैनिक से लेके मोटिवेशन तक वो 18 श्लोक के दरमियान जैसे ले गए और जैसे उनको मोटिवेट किया, तो वो एक काफी थेरेप्यूटिक एक सेशन था। तो थेरेप्यूटिक सेशन में आइडियली जब भी कोई इंसान को पैनिक या एंग्जाइटी का एपिसोड आता है तो हम सिर्फ कॉन्शियस या जो अभी के जो सिचुएशन है उसको सिर्फ एड्रेस नहीं करते पर उसका जो अपब्रिंगिंग के साथ, उसका कल्चरल के साथ, उसके कल्चरल एस्पेक्ट, उसके सोशल एस्पेक्ट और वो सभी चीजों को एड्रेस करते हैं। जो अगर आप शांति से अगर जब भी आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कृष्ण ने सिर्फ वो बैटल फील्ड की बात नहीं की, सिर्फ कुरुक्षेत्र की बात नहीं की, उन्होंने अर्जुन के पूरे अपब्रिंगिंग के को हाईलाइट किया, उन्होंने पूरा सोसाइटी को हाईलाइट किया, उन्होंने पूरा कल्चरल डिफरेंस को हाईलाइट किया और उस सब को उन सब चीजों को चैनलाइज करके मोटिवेशन में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने वर्क किया। तो वो एक आइडियल थेरेपी का सेशन हम बोल सकते हैं कि एक काफी साइंटिफिक और काफी साइंटिफिक फ्लो में किया गया सेशन था।
किस तरह से आप वहां पर बताई गई अलग अलग प्रक्रियाओं को, अलग अलग सिस्टम्स को या थेरेपीज को आजकल के इलाज में इस्तेमाल करते हैं?
देखिए, जैसे भगवद गीता में जो था तो जब भी कोई इंसान बहुत एंग्जाइटी में होता है या काफी लोगों को जैसे पानी का डर होता है या हाइट का डर होता है या लिजर्ड का डर होता है तो वो जो सब फोबियाज हैं वो सब फोबियाज को हम 2 या 3 तरह से ट्रीट कर सकते हैं काउंसलिंग के माध्यम से। एक होता है ग्रेजुअल एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, मतलब उसी चीज को हम एक्सपोजर देते हैं और धीरे धीरे जो उसका जो रिस्पॉन्स आता है कि जैसे अगर किसी को 15वें माले से डर लगता है तो पहले उसी इंसान को दूसरे तीसरे माले पे ले जाना, फिर पांचवें सातवें माले पे ले जाना, फिर पंद्रहवें सोलहवें माले पे ले जाना, और उनका जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को मॉड्यूलेट करना और उनकी जो फोबियाज है उनको एड्रेस करना। वैसे ही दूसरा एक ऐसा भी थेरेप्यूटिक मॉड्यूल होता है जिसमें हम फ्लडिंग करते हैं। फ्लडिंग मतलब जो भी सिचुएशन है अगर उसको पंद्रहवें माले से डर लगता है तो हजारवें माले पे लेके जाने का। तो भगवद गीता में जो किया गया है वो काफी फ्लडिंग जैसा भी है, क्योंकि आप जो थेरेपी सेशन जो हम बोल रहे हैं वो थेरेपी सेशन हो रहा है कुरुक्षेत्र के सेंटर पे, जिस बैटल का या जिस फाइट का एंग्जाइटी का कॉज है उसी के सेंटर पे जाके अगर थेरेप्यूटिक सेशन, तो काफी पोएटिक भी है और साइंटिफिक लैंग्वेज में देखे तो उसको फ्लडिंग भी कह सकते हैं।
और जाते जाते आपसे पूछेंगे कि अंत में कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे, आपने ये पूरा अभ्यास किया, इसमें बहुत सारी चीजें आपको जानने मिली, पूरे विषय को लेकर क्या अंतिम टिप्पणी होगी?
इसमें मैं यही टिप्पणी करना चाहूंगा कि अगर हमारे पौराणिक ग्रंथों में जैसे कि भगवद गीता है या महाभारत है या रामायण है, उसमें अगर मेंटल इश्यूज को, मेंटल डिसऑर्डर्स को इतने ओपनली और इतने शांति से डिस्कस किए जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी, उसका जो सॉल्यूशन है वो भी इतनी ओपनली, कोई भी टाइप के स्टिग्मा के बिना अगर लिया जा सकता है, जैसे अर्जुन भी कृष्ण को बोल सकता है कि भाई मुझे पैनिक एपिसोड आ रहा है, तो अगर ये चीजें इतनी ओपनली हो सकती है तो उसका ट्रीटमेंट भी हमें काफी ओपनली लेना चाहिए, और वो स्टिग्मा उस जमाने में हमारे भगवानों ने भी नहीं रखा था तो हमें भी नहीं रखना चाहिए।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, डॉक्टर मनन को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू हरिता।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।